Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप वेदांत का श्रवण करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये पाने की चाह, ये भी वासना है, ये अद्वैत की वासना है. और जो अद्वैत की वासना है उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है. और सगुण परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको भक्ति कहा जाता है. दोनों भी वासना है. और ये दोनों वासनाएं हमें ले जाती हैं, साधना में ले जाती हैं, प्रवृत्ति में ले जाती हैं, क्रियाओं में ले जाती हैं, कर्म में ले जाती हैं. और संपूर्ण प्रवृत्तियों से परे आत्म तत्व को यदि प्राप्त करना है तो मूल में कामना, और प्राप्त होने के बाद फिर कामना नहीं रहती. आप ध्यान दें, कामना कब तक रहती है? जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक. इसलिए संपूर्ण इच्छाओं का विघातक आपकी ब्रह्म जिज्ञासा, इच्छा इच्छा को मारती है, इच्छा इच्छा को पैदा करती है. ये संसार की इच्छाएं इच्छाओं को पैदा करती हैं. एक इच्छा दूसरे इच्छा को, एक कामना दूसरे कामना को, एक वासना दूसरे वासना को पैदा कर देती है. आप कोई भी चीज लेना, आपके सांसारिक जीवन में एक वासना पैदा होती है और उस वासना को पूरा करते करते अनेकों वासनाएं पैदा हो जाती हैं, वासनाओं का विस्तार हो जाता है. ये संसार की जितनी चीजें हैं ये सब हमारे अंदर वासनाएं और पैदा करती जाती हैं. ये वासनाएं शरीर भाव जगा देती हैं, वासनाएं इंद्रिय भाव जगा देती हैं, वासना से इंद्रियों का होना हमें मालूम होने लगता है. हमारे पास आंख है तब मालूम पड़ती है, जब हमारे अंदर किसी को देखने की इच्छा हो जाती है. हमारे पास जिह्वा है, रसनेन्द्रिय है, ये तब मालूम होने लगता है जब हमारे अंदर इच्छा पैदा हो जाती है कुछ खाने की. जैसे खाने की इच्छा हुई, रसनेन्द्रिय जागृत हो गई. हमारी पांचों कर्मेन्द्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रियां वासना से जग जाती हैं और उस समय मालूम होने लगता है ये चीज हमारे पास है और उसके विषय को पाना है. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही भागवत में, और प्रह्लाद जी ने दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया. उन्होंने कहा न तत् प्रयासो कर्तव्य. बोले संसार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है. ये सहज प्राप्त है, कामना सहज प्राप्त है, क्रोध सहज प्राप्त है, लोभ सहज प्राप्त है. वेदांत में अज्ञान को अनादि बोला है, छह पदार्थ अनादि बोले, उसमें अज्ञान को अनादि बोला है. आप अज्ञानी हैं कब से, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है, आप अनादि हैं. आप मेरे को जानते हैं, जानने की तिथि आपके पास है, थोड़ा खोजेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. अमुक तारीख से आपको हम जानते हैं, लेकिन आप मेरे को कब से नहीं जानते हैं. ये कब से नहीं जानते हैं इसकी कोई तारीख नहीं है. बहुत से लोग अपना ज्ञान का जन्म मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं, आज के दिन हमको ज्ञान हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ, इसलिए बुद्ध, बहुत से लोग बुद्ध पूर्णिमा को मानते हैं. ओहो इस दिन, बहुत से लोग मानते हैं आज के दिन हमको ज्ञान हुआ, मानते हैं, लेकिन कोई अज्ञान का जन्म नहीं मनाते हैं. आप ये नहीं मना सकते कि हम आज के दिन अज्ञानी बने, न मालूम है और न उसका कोई आदि है, अज्ञानी होने का कोई आदि नहीं है। इसलिए अज्ञान को अनादि बोला, अनादि अज्ञान। और अज्ञान जन्य जो कामना है ना, ये भी अनादि है। काम के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है, क्रोध का कोई प्रशिक्षण नहीं है, लोभ का कोई प्रशिक्षण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सारे गुण हैं, अवगुण हैं, लेकिन उसका कोई प्रशिक्षण नहीं है। आप बहुत अच्छा क्रोध करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उसका प्रशिक्षण नहीं है। आपने कोई एक दो दिन का कोर्स किया है क्रोध कैसे करना चाहिए? नहीं। जिसका कोई प्रशिक्षण नहीं, उसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, काम में एक्सपर्ट हैं, क्रोध में एक्सपर्ट हैं, लोभ में एक्सपर्ट हैं। और जिसकी सारी शिक्षा उसमें एक्सपर्ट नहीं है, क्रोध की सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं, ये सारे धर्म, सारे शास्त्र, ये सारे कानून आपको काम के नियंत्रण की शिक्षा दे रहे हैं, क्रोध के नियंत्रण की शिक्षा दे रहे हैं, लोभ पर नियंत्रण की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। सारे कोर्स अकाम होने के, कामी होने के कोई कोर्स नहीं है। सारे कोर्स अक्रोध में जाने के हैं, क्रोध का कोई कोर्स नहीं है। और उसके बाद भी सबसे ज्यादा विशेषता हमारे जीवन में उसी चीजों में है। ये अनादि है, अनादि कामना, ये कब से हैं हम, ये हमारा मूल। और उसको मिटाने के लिए केवल एकमात्र चीज है, वो है ज्ञान। अच्छा, अज्ञान को मिटाने का उपाय क्या है? अज्ञान को मिटाने का एक ही उपाय है, और वो है ज्ञान। अच्छा, मेरे को आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपको जानना है। और जैसे आप मेरे को जानते हैं, मेरा नहीं जानना खत्म हो गया। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो उस नहीं जानने को तोड़ना है, काटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जानना है। तो आप जैसे जान लेते हैं, तो नहीं जानना समाप्त हो जाता है। अंधेरा और प्रकाश, इन दोनों का विरोध है। अंधेरे को काटना है, अंधेरे में चीजें हैं बहुत सारी, और उस अंधेरे को हटाए बिना आपको उस अंधेरे में पड़ी हुई चीजों को नहीं जान सकते। अंधेरे में पड़ी हुई चीजों को आप नहीं जान सकते जब तक उस अंधेरे को काटेंगे नहीं। और उस अंधेरे को यदि आपको हटाना है, आप थोड़ा अगरबत्ती जलाओ, थोड़ा वहां बैठ करके नारायण पूजा करो, पाठ करो, तो अंधेरा भगेगा क्या? वहां आप कितना भी पूजा करो, अंधेरा नहीं भगने वाला है। नारियल फोड़ो, वहां जाके नैवेद्य चढ़ाओ, उसकी परिक्रमा करो, थोड़ा पदयात्रा करो, वो अंधेरा हटेगा? नहीं हटेगा। उस अंधेरे को हटाने का एक ही उपाय है, थोड़ा माचिस जलाओ बस। और जैसे ही माचिस जला देते हैं, अंधेरा हट जाता है। और उस अंधेरे में पड़ी हुई सारी चीजें आपको मालूम होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे आप कौन है, इसका हमें पता नहीं है। हम जब हमें पता नहीं होता है कि हम कौन है, तो हम अपने आप को कुछ भी समझ लेते हैं। फिर आप कौन है इसका पता ना हो, तो आप अपने को कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी। क्योंकि आदमी के मन में ये भाव होता है, मैं कुछ हूं, कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और वो कुछ हूं, वो बहुत कुछ होने में बदल जाता है। फिर हम समझने लगते हैं, ये शरीर मैं हूं। अच्छा, ये सचमुच आप थोड़ा विचार करो कि आप शरीर है क्या? आप ईमानदारी से, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, भगवत गीता कह रहे हैं इसलिए नहीं, वेदोपनिषद कह रहे हैं, साधु महात्मा कह रहे हैं इसीलिए नहीं। आप थोड़ा स्वयं सोचो कि आप शरीर हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञान है। पहले हम निर्णय कर लेंगे कि ये शरीर हम हैं, शरीर हम है कि नहीं है। और यदि सचमुच हम शरीर हैं तो हमारा जानना सही है, और हम शरीर नहीं है तो शरीर है ये जानना हमारा गलत है। महात्मा लोग बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, जैसे आपका होना, आपका होना, आपका जो अस्तित्व है, मैं हूं। आप बोल, आंख बंद करके आप सोचो, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब वो मैं जो है ना, मैं वही तो आप हैं। आप छाती ठोक के बोलते मैं, और आप ये भी बोलते ये मेरा हाथ, ऐसा बोल रहे, ये मेरे पैर, ये मेरी आंखें, ये मेरे कान, ये मेरे बाल, ये मेरा नाक। आप प्रत्येक अंग उपांगों को संवेदना देते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये मेरा मेरा जो कहना है ना, यही सिद्ध करता है कि वो आपका है, आप नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना ये मेरा चश्मा, जब आपने बोला ये मेरा चश्मा तो आप चश्मा हैं कि आपका चश्मा है? आपका चश्मा है, उसको उतार के रख सकते हैं ना, वो आपसे अलग भी हो सकता है। जो आपका रूप नहीं है वो आपसे अलग भी हो सकता है। तो आंख के बिना आपका होना संभव है, कान के बिना आप हो सकते हैं, हाथ के बिना आप हो सकते हैं, पैरों के बिना आप हो सकते हैं। और इसीलिए आपका होना ये होना नहीं है। यदि आपका होना होता तो आप हाथों के बिना नहीं होते। यदि आपका होना और हाथ का होना यदि एक होता तो हाथ के नहीं होने के साथ आपका भी नहीं होना शुरू हो जाता। इसलिए आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप इसके अंदर हैं, आप इसके बाहर हैं, आप चैतन्य सत्ता है। लेकिन हमने इसके साथ तादात्म्य कर लिया है, प्रकृते क्रियमानानी अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम समझ लेते हैं कि मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, और ये जो हमारा जानना है ना, यही अज्ञान है। अज्ञान है, मालूम नहीं पड़ता है, ये अज्ञान है, ये मालूम नहीं पड़ता है। अज्ञान का अर्थ है भ्रांति, अज्ञान का अर्थ है जो जहां नहीं है वहां वो मालूम होना। ये अज्ञान का विस्तार है, मैंने कहा ना अविद्या, फिर कामना, फिर कर। ये अज्ञान जो है ना हमें ले जाता है, भ्रांति में ले जाता है। फिर ये भ्रांति हो गई मैं शरीर हूं, और एक बार आपको मालूम हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञानी तो है ना, ये ज्ञानात्मक है। आपको अलग करना नहीं है, आप अपने को शरीर से अलग नहीं करना है, आपको केवल जानना है कि मैं शरीर से अलग। यहां एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता। हमारे हृदय में जो अज्ञान है ना वो मिटा दे। मैं हूं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, ये वेदांत है। और वो जो आत्मा है ना वो व्यापक है, वो ब्रह्म तत्व है, तत्वमसि। आपने जान लिया मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और वो जानने के बाद हमारे अंदर जो वासनाएं कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं मिट जाती हैं, एक बार मालूम हो जाए। खिलौनों के प्रति बच्चों का बहुत आकर्षण होता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, खिलौने का कोई मूल्य नहीं। आपको बहुत सुंदर कोई खिलौना भेंट कर दे, मेरे को तो लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपके जन्मदिन पर आपको किसी ने खिलौना भेंट किया हो। क्यों मधु बाबू, क्यों दिया जी? बच्चों की बात, बचपन की बात छोड़ो, आप जब बड़े हो गए, बड़े हो गए तो आज तक बड़े होने के समय में आप देखो किसी ने आपको खिलौना भेंट किया है क्या? नहीं। और कोई खिलौना आपको भेंट कर दे बहुत कीमती मूल्यवान, तो आपको लगेगा कि भैया ये क्या मजाक कर रहे हैं, अरे अभी ये खिलौने का समय है क्या? खिलौना आपके लिए खिलौने का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब आप बच्चे थे, बच्चे के लिए खिलौनों का बहुत बड़ा मूल्य है, और पिता के लिए खिलौने का कोई मूल्य नहीं है। पिता खरीदता है, पैसा लगाता है और वो खिलौना देता है बच्चे के हाथ में, बच्चा आनंद में डूबता है, खो जाता है उस खिलौने में, और बच्चे को कभी खिलौना खिलौना नहीं लगता है। आपकी जो चीजें हैं वो बच्चों को खिलौने लगती हैं, आपकी जो कार है ना गैरेज वाली, वो आपके लिए कार है और बच्चे के लिए, और वो खिलौना बच्चे के हाथ में है ना, वो उसका सही है, सही कार है, और वो खिलौने की कार चलाते हुए बच्चा आपके सामने आएगा और वो हॉर्न भी बजाते हैं, बोले रास्ता छोड़ो बच्चा बोलते ना बच्चे, दादाजी रास्ता छोड़ो हमारी गाड़ी आ गई, और वो उसकी गाड़ी आपकी तरफ आ जाती है, इधर उधर नहीं जाती है, वो आपकी तरफ आती है, और वो बोलेगा गाड़ी आ गई रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो, आपको छोड़ना पड़ता है। और वो रियल में जीता है, वो खिलौने में रियल में जीता है वो, और जब वो खिलौना टूटता है तो कौन रोता है? रोना तो पिता को चाहिए, क्योंकि पैसा उसका गया है और दोबारा उसको खरीदना पड़ेगा, खरीद के देना पड़ेगा, लेकिन खिलौने के टूटने से पिता नहीं रोता है, बेटा रोता है, पैसा जाता है पिता का, क्योंकि वो वास्तविक समझता है खिलौने को, वास्तविक समझता है बच्चा, और इसीलिए खिलौने के टूटने से वो रोता है, क्योंकि खिलौना है वो टूटेगा ही। ये संसार जो आप देख रहे हैं ना, उसका वैसा ही नियम है, ये जैसे खिलौने का नियम है वैसा ही नियम है। वो बच्चे छोटे खिलौने से खेलते हैं और हम बड़े खिलौने से खेलते हैं, बच्चों के लिए छोटे खिलौने चाहिए और बड़ों के लिए बड़े खिलौने चाहिए, खेलने में कोई अंतर नहीं है। हम भी खेलते हैं, वो बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन खेलते हुए बच्चों को आप समझाओ वो नहीं मानेंगे, मानेंगे ये खिलौने हैं खेलो मत। आप बच्चों को समझाओ कि भैया ये खिलौने हैं इसके साथ मत खेलो, ये अपनी बड़ी गाड़ी है 5 करोड़ की, इसमें आओ इसमें रहने दो तुम्हारी गाड़ी, वो बच्चा बोलेगा वही। एक इंदौर में बच्चा है, वो क्या बोलते हो कैटरपिलर, क्या बोलते कीड़ा होते हैं ना वो, कैटरपिलर ऐसा कुछ नाम है अंग्रेजी में उसका, पिलर पिलर नाम कोई कीड़ा है, वो लंबा चौड़ा लेके घूमता था वो बच्चा, और जब भी मैं भोजन के लिए जाता था तो मैं उसको बोलता था ये मेरे को दे दो, और जैसे ही उस बच्चे को मालूम होता कि मैं गया हूं घर, सबसे पहले वो अपना वो खिलौना पकड़ के बैठ जाता था पकड़ के बैठ जाता था। बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि स्वामी जी ने मांगा था इसको, इसलिए जैसे ही स्वामी जी आ जाते हैं तो पकड़ के रखता है कि स्वामी जी नहीं ले जाए। और जब मैं पूछता हूं भैया कहां गया मेरा वो पिलर, वो बोलते खो गया खो गया अरे बोले खो गया खो गया, बोले वो है नहीं मेरे पास। मैं बोलता अरे तुम्हारे पास दो थे, बोले नहीं स्वामी जी वो तो खो गया बोले। फिर कभी कभी बोलेगा वो खत्म हो गया, बोले मैं फेंक दिया। मैं बोलता कहां फेंका, जाके मैं ले लूंगा, अरे बोले वो बहुत दूर फेंका है। अब वो बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो वो अब क्रिकेट से खेलने लगा, बैडमिंटन से खेलने लगा, तो मैंने उसको पूछा तुम्हारा कैटरपिलर कहां है अरे बोले वो तो बचपन की बात थी, वो बोले बचपन की बात थी, अब वो गया। अरे यही तो है, यही तो रहस्य है, जिसको हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, और वो एक चीज जानने के बाद, एक चीज जानने में जाने के बाद वो विदा हो जाती है। अब आपके मन में वो कैटरपिलर गया, वो गया, वो आपके कितने भी मूल्यवान जो खिलौने थे वो गए, ढेर लगा था कमरे में वो गए, कहां गए आपको ही मालूम नहीं है। ऐसे ये सारी चीजें अज्ञान जन्य है, वो खिलौने सब अज्ञान जन्य हैं। जब तक वो बच्चा अज्ञान में था तब तक उसके लिए खिलौने थे, खिलौनों के प्रति पागलपन था। आज जैसे ज्ञान हो गया उसको, पाहा हो गया, ऐसे सारी दुनिया की कामनाएं, ये दुनिया के जो आग्रह दुराग्रह पागलपन है ये सब अज्ञान जन्य है। और एक बार आपको पता चल जाए सत्य का, और उसके बाद फिर इसके प्रति जो महत्व बुद्धि है, जो पागलपन है नारायण, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है यदा तत्व ज्ञाने न, ज्ञान के द्वारा समझ के द्वारा सारी कामनाएं वासनाएं संसार की महत्व बुद्धि समाप्त हो गई। हृदय स्थिता जो हमारे हृदय में है वो, और एक बार जब मिट जाती हैं तो उसके बाद फिर अथ मर्त्यो अमृतो भवती एतद्धि अनुशासनम। ये हमारे हृदय की ग्रंथियां हैं, गाथे हैं, गाथे ये गांठ बांधते हैं ना, पुराने जमाने में गांठ बांध देते, और वो गांठ बांधने के बाद वो उलझती जाए, वो खुलती नहीं थी, वो कितना भी कोशिश करो वो खुलती नहीं है। आत्मा रामाश्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्ति मिथ्थं भूत गुणोहरि। ये गांठ हैं हृदय की, कामना वासना क्रोध जलन, ये हमारे हृदय की ग्रंथियां हैं, गांठें, और इन गांठों को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आत्मज्ञान वेदांत है। प्रस्थानत्रय का अध्ययन, श्रवण करो, मनन करो, निरिध्यासन करो, जप करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, ये जितने धर्माचरण के साधन हैं वो सारे हृदय की ग्रंथियों के भेदन के उपकरण हैं। हृदयस्य यह ग्रंथयः प्रविद्यन्ते, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आपने एक बात जान लिया, आपके हृदय की सारी ग्रंथियां समाप्त हो, कामना विकार जलन घृणा सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, और आप अमृत हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ये बंधन बंधन क्या है, आप उसको मानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? आप जिसको बंधन 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 बोलते हैं, आपको कभी ऐसा लगता है क्या क्या बंधन में है? आपको ऐसा कभी लगता है क्या कि सचमुच हम बंधन में हैं? नहीं लगता होगा, क्योंकि बंधन में रहते रहते बंधन में रहने की संवेदना आदमी खो देता है। आप जो करने लगते हैं ना वो आदत हो जाती है, और जब वो आदत में आ जाती है तो वो चीज मालूम होना कम हो जाती है। ये हमारे जीने का रहस्य है। आप बंधन में रहते रहते फिर बंधन की संवेदना खो देते हैं। ये कामना बंधन है, क्रोध बंधन है, लोभ बंधन है, वासना बंधन है, बहुत बड़ी पराधीनता है। हम जिसमें जीते हैं वहां स्वातंत्र नहीं है, अज्ञान में स्वातंत्र नहीं है, ज्ञान में पूर्ण स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें अज्ञान जन्य है, और अज्ञान एक पराधीनता है, ये बहुत बड़ा बंधन है। हमें कुछ भी स्वातंत्र नहीं है, भूख लगती है तो खाते हैं, और नहीं लगती है तो क्या करते हैं? पेट पर हाथ फिराने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। आपको भूख नहीं लगे तो कुछ नहीं कर सकते, और भूख लगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा संपूर्ण जो जीवन है ये अज्ञान तत्व से ये चलित है, और यहां कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, ये अज्ञान की पराधीनता है। और एक बार मालूम हो जाए, ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होने के बाद अज्ञान जन्य वासना कामना क्रोध सारी चीजें जब नष्ट हो जाती हैं, तदा अमृतो भवती, उस समय व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये वेदांत का जो मोक्ष है ना, वो मरने के बाद पाना नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको मुक्त मरने के बाद नहीं होना है, दुनिया के सारे साधन वेदांत को छोड़कर वो आपको मरने के बाद के मोक्ष में ले जाते हैं। आपको बोलेंगे आप मरने के बाद जाओगे कहां, सातवें आकाश में। आप सातवें अंतरिक्ष में वो ऊपर जाना होगा तो मरने के बाद ही जा सकते हैं आप। लेकिन वेदांत आपको मरने के बाद के मोक्ष में ले जाना नहीं चाहता है, आपको वर्तमान में इसी जीवन में इसी शरीर में मोक्ष की अनुभूति में ले जाना चाहता है। इसलिए कहा यह बोले यह इसी शरीर में इसी मन में आप मोक्ष का अनुभव करते हैं जब आपको ज्ञान हो जाता है, वासना की पराधीनता समाप्त हो जाती है। एतद्धि अनुशासनम बोले यही वेदांत का अनुशासन है, यही वेदांत का सिद्धांत है, यही वेदांत का आदेश है। ओम नारायण।